आप हैं SBS हिंदी के साथ।
भारत में कोरोना का संकट और गहरा गया है। पिछले दो दिनों से संक्रमण के 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कमी हो गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बाद केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर आरोप लगाया है।
केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरियादिली से और जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहां की जो पुलिस है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। उसके बिना हो नहीं पाएगा, नहीं तो इस वक्त जो त्राही त्राही दिल्ली के अस्पतालों में मची हुई है, थोड़ी देर में या कुछ समय बाद उसमें लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा हॉस्पिटल्स के लिए भी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही समस्या को दूर कर लिया गया है।
किस किस प्रांत को कितने कितने ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे, और कल शाम तक वो सारी पोजिशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन, अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बताया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के, तो फिर 140 मीट्रिक टन पानीपत में से दिल्ली जाना है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलना है, लेकिन कोटा 240 का बनाया, 20 रिजर्व में रखा है, वो भी सेंटर के लोग ही उसको देखेंगे कि अचानक कहीं एमरजेंसी है तो 20 को डाइवर्ट करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सबको साथ आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की मदद करेगी।
अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे, और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की जरूरत हुई हम वहां डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोविड केसेस भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने मिलकर कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंधन किया। भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलकर इस खतरनाक बीमारी को हमने हराया।
महाराष्ट्र में गुरुवार को 67,000 से अधिक नए मामले सामने आए। अब राज्य में और कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। राज्य में रेमडेसिविर दवा की कमी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। संजय राउत ने गुजरात के भाजपा कार्यालय में इस दवा को बांटे जाने को लेकर सवाल उठाया है।
बीजेपी मुख्यालय में तो रेमडेसिविर फ्री में मिल रहा है, वहाँ तो अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट देकर रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, जैसे इलेक्शन में कुछ चलता है डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कपड़े बांटते हैं, कोई पैसा बांटता है, कोई साड़ी बांटते हैं, तो करप्शन है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये मिल सकता है, लेकिन एज ए स्टेट महाराष्ट्र को नहीं मिलता है और कुछ राज्यों को नहीं मिलता है, तो ये बहुत गंभीर बात।
महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही इस बारे में बताते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अमित मोहन प्रसाद कहते हैं,
विगत 24 घंटों में संक्रमण के 34,379 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 16,514 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2,59,810 प्रकरण हैं। अब तक कुल मिलाकर 7,06,414 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 10,541 लोगों की मृत्यु हुई है।
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने भी कई पाबंदियां लगाई हैं। इसे और भी कड़ा किया जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस बारे में कहते हैं,
पहले हमने कर्फ्यू लगाया, फिर हमने लोगों के एकत्रित होने की सीमा तय की कि इंडोर 20, इंडोर 50 और आउटडोर 200, और अब हमने सभी दुकानों पर कल से शाम को 6 बजे से बंद करने का निर्णय लिया। हमने ये भी निर्णय लिया है कि गैर जरूरी जितने भी कार्यक्रम हैं उनको रद्द किया है। अगर कोरोना और बढ़ेगा, सख्तियां और बढ़ा दी जाएंगी।
अनिल विज का कहना है कि पाबंदियों के बावजूद लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है,
किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बकायदा इंडस्ट्रियां चलती रहेंगी, मजदूर काम करते रहेंगे, जो डे शिफ्ट के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नाइट शिफ्ट के हैं वो 10 बजे से पहले आ जाएं इंडस्ट्री में, सुबह 5 बजे के बाद छुट्टी कर लें ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और इंडस्ट्रियां भी चलती रहे। हम किसी प्रकार का लॉकडाउन करने के बारे में सोच नहीं रहे हैं।
मध्य प्रदेश में भी बिगड़ते हालात को दुरुस्त करने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से साथ देने की अपील की है।
शहर में अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, 30 अप्रैल तक घर पर ही रहेंगे। ये युद्ध है जिसे बाहर निकलकर नहीं घर पर रहकर ही जीता जा सकता है। घर पर रहे, कोरोना हराए।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस विपरीत परिस्थिति में मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
मध्य प्रदेश से बाहर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश में मजदूर भाई बहन आएंगे भी तो उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके चाय, नाश्ता, भोजन से लेके जरूरत पड़ने पर काम देने तक का सारा इंतजाम करने का हम प्रयास करेंगे ताकि संकट के समय कोई दिक्कत और परेशानी ना हो।
कोरोना के बढ़ते मामलों का असर पश्चिम बंगाल के चुनावों पर भी पड़ा है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में बड़ी जनसभा करने पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।